बन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं,
मिलन करा रहे हैं।
जो भी आए भूले नहीं भुलाए,
वो आत्मतृप्त होती सुख जन्म की हो पाए,
मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं,
उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं।
ओम शांति। आज रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन की सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को भी मधुबन से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जो प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है स्पार्क वाली बुक से, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पढ़ेंगे और इस पर देखेंगे, विस्तार भी करेंगे। और आज का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है निश्चय को लेकर। तो प्रश्न है, एक बल और एक भरोसे पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रखकर चलते हैं? जो बच्चे एक बल एक भरोसे पर चलते हैं उन्हें किस बात में निश्चय रहता है? तो इसका उत्तर है, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार द्वारा मुरली चली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है, बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो, मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहां भोग आदि किस्में संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, वह भी माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम देखेंगे यज्ञ इतिहास में जो भी हमारी दादियां महान विभूतियां हुई हैं, अगर उनका हम इतिहास देखें, उनके जीवन दर्शन का हम अध्ययन करें, तो पता चलता है कि कितनी प्रकार की परिस्थितियां उन्होंने झेली हैं। यज्ञ ने बहुत सारी करवटें ली, ब्रह्मा कुमारी ऋचेश इन द वर्ल्ड भी रहा लेकिन फिर भी बैगर का भी पार्ट बजाना पड़ा, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दादियों ने अपने जीवन में एक बल एक भरोसे से इतनी लंबी यात्रा तय कर दी जिससे आज यज्ञ विशाल वट वृक्ष की तरह अनेक आत्माओं को छत्रछाया प्रदान कर रहा है। 8.5 दशक के दौरान, लगभग 8.5 दशक तो हो गए यज्ञ को चलते, तो इसमें बहुत सारी कष्ट साध्य परिस्थितियां आई, लेकिन दादियों की जो लगन अटूट निश्चय दृढ़ता पूर्वक उस पथ पर चलते रहना, यह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो भी कई बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्नों की हलचल हुई, तो भी बाबा ने उसमें संदेश भी दिया और एक मुरली भी है 21 जनवरी 69 की, उसमें भी बाबा ने कहा कि अभी शरीर छूटा है लेकिन हाथ और साथ नहीं छूटा है, तो केवल कमरा चेंज किया है। तो बाबा ने उस मुरली में भी डायरेक्शन दिए हैं कि भविष्य में यज्ञ की कारोबार कैसे चलेगी। तो वहां भी बाबा ने कहा कि जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी, मधुबन में मुरली चलती है मधुबन में ही मुरली चलेगी, जो मुरलियां पहले पड़ी हैं उनको रिवाइज करना है। बच्चे ये नहीं सोचो कि मुरलियां तो पहले हमने सारी पढ़ ली हैं, बाबा ने कहा कल की मुरली क्या थी ये भी याद नहीं होता है, इसलिए जब तक पक्का नहीं हो तो उन मुरलियों को रिवाइज करना है। उसके लिए फिर दो आत्माओं को बाबा ने मुकर्रर किया, दादी जी और दीदी जी को, कि संदेशी का पाठ अगर बाहर चलता है और कहते हैं अगर उसमें बाबा आता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, जो इसमें भी बताया बाबा ने प्रश्न में, और उस मुरली में भी कहा कि संदेशी के पाठ के द्वारा अगर बाहर समझते हैं कि इसमें बाबा आते हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, और संदेशी को भी मुकर्रर दीदी और दादी करेंगे। और यज्ञ के जैसे पोस्ट जाती है मुरली की वैसे पोस्ट जाएगी, जो डायरेक्शन मधुबन से जाएंगे वही डायरेक्शन मान्य होंगे। तो 1969 के बाद धीरे धीरे कुछ बाहर में ऐसी भी संस्था के हिसाब से ही दूसरी संस्थाएं भी खड़ी होगी, जो कि हम सुनते हैं आजकल कि यहां बाबा आते हैं फलानी जगह बाबा आते हैं। तो ये अनेक प्रकार की आत्माएं हैं जो भ्रमित कर माया को भी ब्राह्मण में प्रवेश करने में सहायक सिद्ध होती है, एडवांस ज्ञान देते हैं, तो माया की चाल में फंस जाते हैं, माया धोखा देती है, क्योंकि माया के भी दिन प्रतिदिन भिन्न भिन्न रॉयल रूप होते हैं। हाँ, जैसे कोरोना के रूप जो हैं वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, उसी तरह माया के रूप भी बदलते जा रहे हैं। तो निश्चय तो ज्ञान में भी होता है, बाबा में भी निश्चय है, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि निश्चय में कोई कोई बच्चे डगमग हो जाते हैं। तो इस मुरली में बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसा, अर्थात निश्चय अटूट हो। तो निश्चय हमारा अटूट कैसे होता है, क्योंकि हमारा निश्चय किसी मनुष्य की शिक्षा के आधार पर खड़ा नहीं है, या कोई परिस्थिति आई तो हम भगवान के बन गए, ऐसा नहीं है। हमारा जो निश्चय मजबूत नींव हो उसका आधार है ज्ञान। तो ज्ञान सत्य हमको मिल गया, क्योंकि सभी हम आत्माओं ने भले इस जन्म में किसी ने भक्ति कम की है किसी ने ज्यादा की है, लेकिन अनेक जन्म में अनेक प्रकार की भक्ति करके हम सभी अनुभवों के सागर बने हुए हैं, संसारिक अनुभव। लेकिन जब हम ब्राह्मण आत्माओं को सत्य ज्ञान मिला, क्योंकि आत्मा उस अविनाशी ज्ञान की प्यासी है, आत्मा अविनाशी है तो उसको अविनाशी से ही उसकी प्यास बुझाई जा सकती है। तो हमारा जो आधार है निश्चय का वो है ज्ञान। तो एक बल एक भरोसा, अगर मान लीजिए मैं आपसे दोस्ती करता हूं तो मुझे आप पर शत प्रतिशत निश्चय कब होगा, कब निश्चय होगा, तब मेरी दोस्ती प्रगाढ़ होगी जब शत प्रतिशत निश्चय होगा। लेकिन उन्होंने निश्चय कैसे होगा, हाँ एक तो है समय पर काम आएंगे, और दूसरा आपके पास जो भी कुछ है आपने अपने मन में कुछ नहीं रखा, चाहे वो स्थूल प्रॉपर्टी है या कुछ भी संबंध है, वो सारे आपने हमारे सामने प्रत्यक्ष कर दिए, माना आपने हमारे पर भेद रखा और हमने आपके ऊपर भेद रखा। जो भी चल अचल संपत्ति है एकदम क्लियर हो गया आमने सामने। तो उसी तरह से बाबा ने सारे खजाने हम सबके सामने रख दिए, और उन सब खजानों का आधार क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान एक बल है, बल अर्थात शक्ति है। तो सारी शक्तियां बाबा ने अचल अचल चल अचल सारे खजाने हमारे सामने रख दिए, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। क्योंकि हमारे जीवन में इस ज्ञान के मिलने के बाद जो परिवर्तन हुए वो साधारण परिवर्तन नहीं है, उन परिवर्तनों के पीछे अनेक प्रकार की परिस्थितियां होते हुए भी
अनेक प्रकार की आत्माओं का सहयोग लेते हुए आया, अनेक प्रकार की आत्माओं की बाधा भी उन्होंने हमारे जीवन में पैदा की, लेकिन आत्मा को जो अविनाशी ज्ञान मिल गया, जो उसका शुद्ध भोजन है, असली खुराक है, तो उनकी परवाह नहीं की उस विघ्नों की। तो बाबा ने जितना भी सारी प्रॉपर्टी है, बाबा ने कहा जो मेरा वो सब तुम्हारा है। इसलिए कई दफा बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि बाबा से मांगो मत, तुम तो बाबा के हर खजाने के अधिकारी हो। या फिर ऐसे भी कहते हैं कि अभी तो भाग्य भी दादा ही तुम्हारा हो गया, जो बाप का है वो तुम बच्चों का है, इसलिए भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, अधिकार है। इसलिए हमेशा बाबा कई दफा ये भी कहते हैं कि अपने को ऊंचे से ऊंची सीट के सम्मान की सीट पर बिठा के रखो कि मैं हम बाप समान संपूर्ण आत्मा हूं। लेकिन होता क्या है, कई दफा हमारे कुछ ऐसे संस्कार होते हैं कि हम उस सम्मान की सीट पर अपने आप को बिठाने के योग्य नहीं बना पाते, इसलिए वहां हिचकते हैं, अर्थात उस ज्ञान को हमने अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो निश्चय हमारा तब बढ़ेगा जब ज्ञान का संपूर्ण बल हमारे में है, और दूसरा पवित्रता का बल। वो ज्ञान भी हमारी बुद्धि में तब बैठेगा, कंडीशन है उसकी कि बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। इसलिए बाबा कहते ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। तो जो हमारी बुद्धि वो तो कैसी हो गई थी, लोहे पत्थर ठिकर मित्र, बाबा बुद्धि में क्या भरा, साकार मूल्य में आता है ठिकरियां, तो बुद्धि हमारी ठिकर पत्थर जैसी हो गई थी। तो अभी उसको सोने का बर्तन बनाना है। तो ज्ञान जैसे जैसे ठहरते जाएगा तो पवित्रता भी हमारी बढ़ती जाएगी, और पवित्रता बढ़ेगी कि ज्ञान भी ठहरता जाएगा। इसलिए पवित्रता का बल भी हमको जमा करना है, तो हमारा निश्चय मजबूत होता जाएगा। नहीं तो समय आने पर माया परिस्थितियां हिला के रख देंगी, और भगवान के महावाक्यों पर भी हम हलचल में होने आरंभ हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि बाबा जो कह रहे हैं हम उस पर एकदम स्थिर रहेंगे। अगर हमारे में वो ताकत नहीं है उन महावाक्यों को पचाने की, तो वहां पर भी हमारी संशय की उंगली उठना संभव है, वहां भी संशय के विचार आना संभव है। क्योंकि हमने उसके जो इतना शुद्ध अमृत है, इतना पवित्र अमृत है, उसको अपने में अमल में लाने के लिए, धारण करने के लिए अपनी बुद्धि को तो योग्य नहीं बनाया। क्योंकि अगर किसी की बात को हम नहीं मानते तो वहां हम अपने आप को बचाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने सामने खड़े कर देते हैं। तो इसलिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, और पवित्रता कैसे बढ़ेगी, योग बल से। जितना योग बल होगा उतना हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि का कनेक्शन लाइन क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, तुरंत बैठे और तार जुड़ जाए। लेकिन इसके लिए साधना की जरूरत है, अनेक प्रकार के मर्यादाओं की रेखा के अंदर अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। इसलिए बाबा ने कहा जो श्रीमत मधुबन से मिलती है वही, तो श्रीमत बाबा की क्या क्या है, जो बाबा कहते पवित्र बनो योगी बनो। तो योग का बल भी अनिवार्य है। जितना हम अपने जीवन में योग का बल जमा करते जाते हैं, उसके साथ हमारा तार जुड़ता जाता है, तो संसार के सभी व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थों से हमारा बुद्धि योग स्वतः हट जाता है। क्योंकि एक से सर्व संबंध हमको प्राप्त हो रहे हैं। अनेक संबंधों में बुद्धि बिखरी होगी तो क्या होगा, और ही हम कमजोर होते जाएंगे। एक से सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है, और एक से सब कुछ मिल रहा है, एक से हमको तीन्द्र सुख का अनुभव हो रहा है, तो दूसरी तरफ बुद्धि जा ही नहीं सकती है। इसलिए हमको योग का बल भी जमा करना है। और योग का बल कैसे जमा होगा, उससे स्नेह प्रेम जिसको याद करना है। कल की मुरली में था ना लास्ट सेंटेंस क्या था, स्नेह और संबंध से याद करो तो याद ना आए हो ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता, भूलना मुश्किल हो जाएगा, उसको भूल कैसे पाएंगे। एक बार जिसने स्वयं ही हमें हमारे ऊपर अपने आप को निछावर कर दिया, वो कैसे भूल सकता है फिर। इसलिए जिससे प्यार होता ना, वो सपने में वही आता, वही घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा। भले रिश्तेदार होंगे उनके साथ हमको 50 साल रहते हुए, लेकिन ध्यान तो हमारा प्यार हमारा कहीं और ही है, तो बुद्धि वहीं जाएगी बार बार। इसलिए प्रेम भी चाहिए, तो हमारा योग सहज हो जाएगा। सर्व संबंधों का सार है वो, जिससे हमको सर प्राप्तियां होती हैं, इसलिए बाबा कहते प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो निश्चय होता, निश्चय मजबूत होता जाएगा। और कौन सा बल चाहिए? और कौन सा बल चाहिए? ज्ञान का बल तो हो गया, ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, योग का बल, प्रेम का बल, मर्यादाओं का बल, श्रीमत का बल, संगठन का बल बहुत जरूरी है, सेवाओं का बल, दुआओं का बल, क्योंकि ये अनेक प्रकार के बल हैं जो हमको शक्तिशाली बनाते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द बहुत शक्तिशाली किले की तरह एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं, सुरक्षा दीवार, जिससे हम माया के अनेक प्रकार के धोखों से सुरक्षित रहते हैं। तो एक किले बनाने अपने इर्द गिर्द, तो दुआएं भी कैसे जमा होंगी जब सबसे पहले हम बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहेंगे। इसलिए श्रीमत हमारी सुरक्षा कवच है, ढाल है, हमारे माया से, माया की नजरों से बचने का साधन है। तो श्रीमत की भी देखना क्या क्या है, अमृत वेले से रात्रि तक, नहीं तो माया कैसे आती, जो बाबा बीच में कह रहे हैं, जो प्रश्न है कि बाबा केवल मधुबन में ही आते हैं, आजकल तो कई जगह आ रहे हैं। तो इसमें भी सोचने विषय है कि जिस यज्ञ को भगवान ने इतने सालों से सींचा है ना, इतनी आत्माओं ने अपना खून पसीना वहां बहाया है, त्याग तपस्या किया है, उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी उस यज्ञ में, उस यज्ञ को छोड़कर क्या बाबा बिना बताए कहीं चला जाएगा क्या? सोचने विषय तो उसका वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ, मेरा शरीर छूटा, हाथ और साथ मेरा सदा तुम्हारे साथ ही है। तो आज कुछ कुछ आत्माएं भ्रमित हो रही हैं। हाँ, जहां भी बाबा के आने की सूचनाएं होती हैं, आता तो है कोई वहां भी, लेकिन वो आत्माओं की प्रवेशता है और आत्माएं भ्रमित करने, क्योंकि हिसाब किताब है उन आत्माओं का भी, तो भ्रमित करने के लिए आत्माओं की प्रवेशता हो रही है और आवाज बाबा के जैसे निकालेंगे। हाँ जी, हाँ, जिसकी बॉडी नहीं होती वो आत्मा प्रवेश करती है। वैसे भी आप देखेंगे कई बार स्थूल आवाज भी आती है, जैसे हमने यहाँ देखा था एक बार रात के ग्रुप में, सूरज भाई के सामने आए थे, आप थे उसमें, इधर नहीं तो निखिलेश भाई थे, देवेंद्र भाई भी थे, यहीं बैठे हुए थे। तो वो कैसे एक आत्मा माता में आ गई और जोर से चिल्लाई, दुबली पतली मात्रा और एक टेबल एक बाएं हाथ से फेंक दिया उन्होंने, इतनी ताकत आ गई उस आत्मा में। तो आत्मा की आवाज उस समय स्थूल में थी, लेकिन कोई कोई आत्मा की आवाज सूक्ष्म हो जाती है, और सूक्ष्म उनकी होती, उन सबकी नहीं होती वैसे ये, जिसने ने जिसका कुछ विशेष अच्छा पार्ट होता ना उसकी आवाज सूक्ष्म हो जाती है, और जिसका खुराफाती वाला पार्ट है ना उसकी आवाज ही रहती है ज्यादा। वैसे भी आप देखेंगे जो प्रपंच में रहते हैं उनकी आवाज ज्यादा होती है, और जो किसी को अच्छा कार्य करना हो वो ज्यादा आवाज नहीं करते हैं। तो कुछ आत्माओं का ऐसा भी पार्ट है कि वो भी जरूर थोड़ा बहुत तो अच्छा मार्ग दिखाती होंगी, लेकिन जो गति सदगति का मार्ग है वो केवल एक बाबा के सिवा दूसरा कोई दिखा नहीं सकता है। इसलिए संसार में कई प्रकार के ऐसे बाबा आएंगे अपना, क्योंकि वो उन आत्माओं को भी पार्ट है, वो भी हमारी परीक्षा लेने का एक कारण है। हाँ जी, फिल्टर करने के लिए आएंगे, हैं? हाँ, अपने आप को भगवान सिद्ध करने के, क्योंकि होता कई बार ये भी होता है ना, घरों में देखेंगे आप कि अगर बाप की बच्चे ऐसा होता है कि बच्चा कुछ कहे और बाप नहीं माने तो क्या होता है, फिर बच्चा खड़ा हो जाता है उसके विरोध में। तो ऐसे यहां भी कुछ ऐसे होगा कि बाबा गोली भी मारे तो प्रॉपर्टी के लिए, तो यहां भी ऐसे अपने को बाप सिद्ध करने के लिए कोई कोई आत्माओं का पार्ट ऐसा होता है। तो हमारी निश्चय की परीक्षा है, उन परिस्थितियों में भी हम मजबूत रहें, तो अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं के रूप में, साधनों के रूप में, आत्माओं के रूप में ये हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी, लेकिन इसमें भी हमको मजबूत तब पन पाएंगे जब हम ये सारे प्रकार के बल जमा करते जाएंगे। एक बल एक भरोसा, श्रीमत की लकीर के अंदर, मर्यादाओं की लकीर के अंदर, और संगठन का किला ब्राह्मण, क्योंकि कई बार संगठन में आदमी फेल भी हो जाता है। उसमें बाबा ने एक मुरली में बताया है कि अगर अवगुणी दृष्टि है तो भी एक दिन वो खिसक जाएगा। तो यहां भी हमको देखना है, जो कल बाबा ने मुरली में कहा थे होली हंस बुद्धि, तो अपनी को अपनी बुद्धि होली हंस के समान बनती जाए, सब में हम विशेषताएं देखते जाएंगे, नहीं तो बाबा आकर अगर सब में अवगुणी देखते तो क्या होता। इसलिए आप जितने भी मूल्यां देखेंगे तो किसी भी मूल्य में बाबा ने ये नहीं कहा कि आज बाप दादा बच्चों का अवगुण बताएंगे, हमेशा मीठे बच्चे। और बाप किसी की कमजोरियों को नहीं देखते थे, तीन चार संडे पहले मूल्य में थे, बाप हर बच्चे की विशेषताओं को देख कार्य में लगाते हैं, पहले महिमा करते हैं, फिर धीरे 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 करके हमारे जो अंदर कमी कमजोरी है उनको भी निकालने का साधन बताते हैं, इशारा देते हैं वो भी, क्योंकि हमारी भूमि जो है बुद्धि रूपी भूमि में वो बीज जब डलता है मन में तो बीज वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि पहले बाबा उसको नरम कर देते हैं, पहले से मूर्छित हैं, ऊपर से हथौड़ा लगा दिया तो और ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाबा मूर्छित को सुजीवित करेंगे, संजीवनी बुट्टी भी तभी काम करेगी, गर्म करके धीरे धीरे उसको तैयार करते हैं। तो ऐसे माया के अनेक प्रकार के रूप आते हैं, तो इसमें हमको सेफ रहना है। तो प्रश्न ये था कि एक बल एक भरोसे पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रखकर चलते हैं, तो उत्तर यही है कि जो मधुवन में श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है, जो मधुवन में मुरली चलती है वही मुरली है, इसलिए मुरली हमारे जीवन का श्वास है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। तो सचमुच मुरली तो एक भगवान के महावाक्य अर्थात वो सीधा साक्षात भगवान सम्मानी है, उसके एक एक महावाक्यों को हम पढ़ें, उसमें आत्मसात करें, उस पर थोड़ा मनन करें, चिंतन करें, सारे दिन में उसको दोहराएं, रिकॉल करें, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर हम कहीं भी रहते हैं लेकिन ध्यान हमारा बुद्धि हमारी मधुबन में रहेगी। इसलिए बाबा ने पिछले संडे बताया ना, जो नैरोबी वालों से बाबा बात कर रहे थे कि परमानेंट एड्रेस कौन सा आपका, मधुबन है, भले रहते उधर हो लेकिन मधुबन है, जो रूहानी कल्प कल्प के विजयी सेना हो उस मुरल में था ये सारा, तो हमारा मधुबन परमानेंट एड्रेस है। तो यहीं से जो श्रीमत मिलती है, डायरेक्शन मिलते हैं, उस पर ही चलना है, नहीं तो माया किसी भी प्रकार से धोखा देने में पीछे नहीं हटेगी और माया के अचंभे में हम फंस जाएंगे। इसलिए बहुत कदम कदम पर सावधानी रखने की जरूरत है। तो बाबा करे बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता, सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो, पढ़ाई में निश्चय हो। इसलिए पढ़ाई को क्या कहता है, सोर्स ऑफ इनकम, ये सोर्स ऑफ इनकम है। जितना हम पढ़ाई में ज्ञान योग में बुद्धि को बिजी रखेंगे, बुद्धि उतनी शुद्ध पवित्र होती जाएगी, ऊंच बनती जाएगी और वो बुद्धि दूसरों के गुणों को ग्रहण करेगी, क्योंकि हंस बुद्धि बनती जा रही है। दूसरी कोई पढ़ाई नहीं, जो मधुबन से पढ़ाई होती है वही पढ़ाई है। अगर कहां भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो वो भी रॉन्ग है, बाबा कहते हैं उसमें जो शरीर का शरीर छोटा हाथ साथ नहीं छोटा, उस मूल्य में बाबा ने बताया हुआ है कि केवल दादी और दीदी की मुकर्रर करेंगे जिसका पार्ट होगा संदेशी का भी। और कुछ दिन पहले ये भी था साकार मूल्य में कि तुम बच्चों को सूक्ष्म वतन की ज्यादा बातों में इंटरेस्ट नहीं रखना है, वो भी सारा टाइम वेस्ट है, वो बाबा कहते पाई पैसे का खेल है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारा काम है केवल एक ही लाइन में, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, लेकिन उस लाइन को भी पक्का मजबूत करने के लिए इन सब बातों से गुजरने की जरूरत है। एक बाप दूसरा न को, उससे सारे संबंध। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे, और रास्ते तो संसार में खुलेंगे अनेक प्रकार के, क्योंकि संसार में तो सिद्धियां बहुत है, तुरंत सिद्धि होती है, जो आप कहेंगे वो तुरंत सिद्धि हाथों हाथ देंगे, मुख में जो आप बोलेंगे हाथों हाथ सिद्धि मिल जाएगी, शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन यहां तो कदम कदम पर फूक फूक चलना है, ऐसे हाथों हाथ नहीं है, नियम मर्यादा है, वहां तो नियम मर्यादा में कोई है ही नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे दूसरे संगठन जो जहां बाबा आते हैं दूसरे स्थानों पर, वहां भी नियम मर्यादा इतने मजबूत नहीं है, खाओ पियो मौज करो और पवित्रता की धारणा नहीं है उनके जीवन में। आप देखेंगे वो जो रूहानियत होना चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, जो आपस में मिलनसारिता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, धारणाएं बिल्कुल जो कच्चे हैं, एकदम कच्ची धारणाएं हैं। तो बाबा हमको बार बार हमको सचेत करते हैं कि मधुबन से जो मुरली चलती है उस पर ध्यान दो, तो कितनी बड़ी अटेंशन रखने की जरूरत है। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। तो सबसे पहले तो हमको ज्ञान के बल को मजबूत करना है। एक बल एक भरोसा, उस एक में जितने भी बल हैं वो सारे हमको अपने आप में भर लेने हैं। और वो ज्ञान का सबसे पहले उसकी महिमा क्या है, ज्ञान का सागर, पतित पावन बाद में, लेकिन सबसे पहले ज्ञान का सागर है। ज्ञान अर्थात प्रकाश है, अंधेरा खत्म। जैसे काली बताया था, क्या बताया था कि स्विच ऑन करो तो स्थिति, स्मृति का स्विच ऑन करो तो अंधेरा समाप्त, रोशनी हो जाएगी। तो हमारे जीवन में अगर ज्ञान की रोशनी रहती है तो माया दूर रहेगी। जिसके बारे में बाबा कहते हैं जानवर भी अगर आते हैं तो क्या करो, लाइट जगा दो तो जानवर भाग जाएंगे। तो माया भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म कमी कमजोरियों वाले विचारों की तरह तो आती है। योग अग्नि जलाकर रखो तो भाग जाएगी। तो उसी तरह से हमको ज्ञान में बहुत निपुण बनना है। इसलिए ऐसा नहीं कि खाली हम योग में बैठे, ज्ञान भी पढ़ते पढ़ते केवल योग युक्त अवस्था बन जाती है। वो केवल देखा होगा, अनुभव किया होगा, योग में इतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन ज्ञान को अगर हम धीरे धीरे पढ़ें उसमें जो रस बैठने लगता है तो वो भी योग की अवस्था से कम नहीं है। वो भी हाँ, मनन करते करते मगन हो जाना है। और ये होता है कई बार तीन दृश्य का अनुभव ज्ञान पढ़ते पढ़ते हो जाता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं उसमें भी। कई बार मुरली सुनते सुनते कैसे लगता है, उतनी खुशी योग में नहीं होती कई बार। तो ज्ञान को मजबूत करना है, क्योंकि हमारे ये योग का फाउंडेशन है, परमात्म प्यार बढ़ाने का फाउंडेशन है, पवित्रता को बढ़ाने का आधार है, ये मर्यादाएं मजबूत करने का साधन है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाँ, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी, तो फिर वो उतना हमारे में परिवर्तन नहीं होता, फिर भी माया आती है। तो उसमें भी ये है कि हमको ज्ञान की कमी है वह, कि हम किसके यज्ञ में समर्पित हैं या नहीं है। भले लौकिक में रहते हैं, लेकिन जिसका हमको ज्ञान मिला है अगर वो हमको संपूर्ण रीति से समझ आए तो उसकी सेवा किए बिना रह नहीं सकते। भाई आपने हमको सारी प्रॉपर्टी दे दी समझ लीजिए, और मैं आपके प्रति कुछ करूं ना, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जिससे हमारी पालना हो रही है, जिससे आत्मा को एकदम पंख मिल रहे हैं उड़ने के लिए, वो एकदम जैसे मरी पड़ी थी आत्मा, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, उसको भी एक उमंग उत्साह मिला, एकदम श्वास आ गया उसको। तो उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, उसके प्रति सेवाएं स्वतः होती हैं, और सेवा होगी तो फिर दुआओं का बल भी मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम प्रपंच में डूबे रहेंगे तो सब आत्माओं का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण नेगेटिव बनेगा, और वो दृष्टिकोण भी हमको डुबा के रख देगा, वो भी माया सूक्ष्म रूप से आएगी, पता नहीं चलेगा कि हम तो ज्ञान युक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे बाबा कहते हैं इसने अपनी लीकेज को चेक करो, लेकिन लीकेज कहीं ना कहीं होती जा रही है। तो ज्ञान को पहले बहुत मजबूत करना है। ज्ञान हमारा मजबूत होगा, क्योंकि सारे बिल्डिंग का पवित्रता तो फाउंडेशन है, ये वो तो निश्चित तौर पर है, लेकिन ज्ञान अगर मजबूत है तो पवित्रता स्वतः आने लगेगी। क्योंकि ज्ञान क्या है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। तो वो हमको पवित्र क्यों रहना, पहले पता तो चलेगा ना, डायरेक्ट पवित्र रहेंगे तो वो भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ज्ञान जो है ये हमारा खुराक है, हमारे भोजन है ये। तो ज्ञान का बल मजबूत करना है, पवित्रता का बल फिर स्वतः आ जाएगा, योग स्वतः लेगा, फिर धारणाओं का बल, धारणाओं में बहुत बड़ा बल है। फिर छोटी मोटी धारणाएं हैं, चाहे वो खाने पीने की शुद्धि है, चाहे वो स्वन संपर्क में जो क्या बोल बोलना है। काल भी बाबा ने बोला ना, हंसमुख बोल अर्थात व्यर्थ व साधारण भी नहीं है। एक मुल्लिम बाबा ने कहा व्यर्थ व साधारण बोल भी अपवित्रता है, व्यर्थ संकल्प और साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। तो वो भी दिन प्रतिदिन हमारे उसमें शुद्धि होती जाए, अर्थात एक तो हम बोल में आ रहे हैं, किसी को कटाक्ष ना लगे ऐसे हम, हाँ बाबा ने कहा हंसी मजाक में था वो, लेकिन हंसी मजाक से दूसरे की अवस्था ना गिर जाए, उस अवस्था में उसमें रूहानियत हो, रुहाव हो, अलौकिकता हो, दिव्यता हो, ताकि उस दूसरे की उमंग सा मिले। ऐसा नहीं हमारे रूखा सूखा जीवन है, तुम बाबा कहते खुश नसीब हो, सबको खुशी प्रदान करने वाले हो। जीवन में क्या है, खुशी का तो अकाल पड़ा हुआ है, सबको खुशी चाहिए। संसार में जितने भी संसाधन जुटाते हैं किस लिए, खुशी के लिए, पार्टी करते हैं, क्या क्या करते हैं, और इस ज्ञान में कितनी खुशी समाई हुई है। बाबा कहते तुम्हारा तो एक एक रोमांच खड़ा होना चाहिए। तो ज्ञान का बल हमको मजबूत करना है, इसलिए बाबा कहते हैं मुरली पर ध्यान दो। मुरली का एक महावाक्य में अनेक प्रकार के रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन ये तभी होंगे जब हमारा ज्ञान के बल से बुद्धि का शुद्धिकरण होता जाएगा। तो ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, योग का बल, धारणाओं का बल, मर्यादाओं का बल, श्रीमत का बल, पढ़ाई का बल, स्नेह का बल, संगठन का बल, कितने प्रकार के बल है, सर्वशक्तियों का बल, परमात्मा शक्तियों का बल, तो रोज हम कोई दुआओं का बल, सेवाओं का बल, कितने प्रकार के बल हैं, तो एक के पास में जो बल हैं वो सारे बल हम अपने आप में ले लेने हैं। हाँ, स्थूल साथ नहीं। हर पल हमारे साथ में है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां जो प्रश्न बताया जा रहा है मधुबन के बारे में बाबा है कि सारी डायरेक्शन मधुबन से जाती है। संसार में तो ठीक है बाबा कहते अपने घर को ही मधुबन जैसा रोल मॉडल बनाओ, जैसे दादी जानकी जी के साथ मुलाकात की लंदन के लिए, लेकिन जो नियम डायरेक्शन है वो हेडक्वार्टर से है, वो सब टाल टालिए हैं, लेकिन जड़ तो यहां, बीज तो यहां है। बीज के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होगा, टाल टालियों से होगा तो क्या होगा, टाल टालियां कभी तूफान आएगा गिर सकती हैं, लेकिन बीज धरती के अंदर छिपा हुआ है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बीज के साथ कनेक्शन रखेंगे, टाल टालियों को पत्तों को पानी अपने आप जाता रहेगा। जी बनाने ट्री का मिसाल, हाँ तो वो कभी गिरता नहीं है, गिर तो जाता है, लेकिन जो कलकत्ता वाले उसके अलग, वो अलग तरीके से उसका देते हैं मिसाल। तो ये प्रश्न है, ये था कि मधुबन से जो मुरली चलती है वही मुरली है, मधुबन में बाबा आते हैं वही बाबा है, अगर संदेशी द्वारा बाबा का पार्ट कहीं बाहर चलता है तो वो रॉन्ग है। इसलिए मुरली पर, पढ़ाई पर ध्यान दो, श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया किसी भी धोखे में अपने को ले सकती है, और अंत में तो अनेक प्रकार के धोखे आएंगे, स्वयं के संस्कार ही हमको धोखा दे देंगे, इसलिए संभाल रखनी बहुत सारी चीजों से। ओम शांति।
मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती,
हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती,
रूहानियत ननों में सूरत पवित्र होती,
शिव बाबा स्वयं सबको सजा रहे हैं,
उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं।
प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते,
हीरे पे संगम के वरदान जो है पाते,
भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं,
उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको